अपना जीवन सफल हो गए ऐसे महापुरुषों के वचन। आज महाभारत में बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल युधिष्ठिर जी ने एक प्रश्न किया था कि महाराज किसी राजा के पास पैसा न हो, धन उसका छीन लिया गया, किसी कारण से क्षीण हो गया और उस राजा से मंत्री लोग भी नाराज हो गए, अब उसकी प्रजा में कोई सुनने वाला भी नहीं, सेना भी नहीं, वो राजा कैसे सुखी रह सकता है। पितामह भीष्म ने कहा कि देखो, हम तुमको एक इतिहास की कथा सुनाते हैं। एक क्षेमदर्शी नाम का राजा था। उसकी ऐसी दशा हो गई जैसा तुमने कहा। कंपन नहीं हो गए इसी कारण, अब तो नहीं हो रहे। चलो, क्षेमदर्शी नाम के राजा के धन वगैरह सब उसका चला गया, उसकी बड़ी हालत खराब हो गई। तब वो कालक वृक्षीय नाम के एक मुनि थे, उनके पास गए, जो कल परसों आए थे ना कौआ लेकर के, वो उसका नाम था कालक वृक्षी। उसके पास में गए, कहने लगे महाराज, धन के ऊपर मनुष्य का अधिकार होता है, खूब उसके लिए चेष्टा भी करता है, पर धन नहीं मिले तो क्या करे। आप ये मत कहना कि मर जाओ, मरने का मेरा विचार नहीं। आप ये भी मत कहना कि थोड़ा मांग लो, मांगूंगा भी नहीं। आप ये भी नहीं कहना कि किसी की शरण में चले जाओ, किसी की शरण में भी नहीं जाऊंगा। और कोई नीच कर्म करो ऐसा भी मैं नहीं करूंगा, आखिर मेरा भी कोई स्थान होता होगा। ये मेरे एक बहुत बड़ी संकट की बात है, आप जैसे महापुरुष ही टाल सकते हो। जब मनुष्य के मन में वैराग्य हो जाए, ये देखो, जब मनुष्य के मन में वैराग्य हो जाए तब तो बात अलग है, परंतु वैराग्य नहीं है तब क्या करे। मुझे तो बड़ा विचित्र लोगों का स्वभाव दिखता है कि सुख के लिए वे धन को इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि ये धन कभी हमको छोड़ देगा, हम धन से रहित हो जाएंगे, हमारी क्या दशा होगी। मेरे पास कितना बड़ा धन था, सारा धन मेरा चला गया, आज वो सपने कैसी बात हो गई। लोग क्यों ऐसा करते हैं समझ में नहीं आया, धन के पीछे क्यों पड़ते हैं। और मैं भी इतनी दीन अवस्था को प्राप्त हो गया, फिर भी मैं धन के पीछे पड़ा हूं। धन के अतिरिक्त कहीं भी सुख होता हो वो मुझे बताइए। बड़े बड़े राजाओं का मैंने चरित्र सुना कि वे राजपाट धन संपत्ति छोड़कर वन में चले गए। मैं उनको प्रणाम करता हूं, कितना उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया उन्होंने। इतनी बड़ी संपत्ति रहते हुए उसका मोह त्याग दिया, और मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, मैं मोह नहीं छोड़ पा रहा हूं। पैसा तो है नहीं, मुंह मेरे पास रह गया, बड़ी दीन अवस्था हो गई मेरी। उस राजा के पूछने पर मुनि ने उत्तर दिया कि तुम थोड़े समझदार आदमी मालूम देते हो। जीवन में ऐसी समस्या आती हो तो मनुष्य को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। आज तक शरीर में जब मैंपन किया और किसी वस्तु में ममपन किया तो ये मैंपन और मेरापन दोनों का दोनों अनित्य ही हुआ। राजन, जिसको तुम है मानते हो ये गलती है, उसको नहीं मानो। जो इस परिस्थिति को नहीं मानता है उसके मन में कभी दुख नहीं होता है। दुख होने का कारण यही है कि इस संसार को, इस परिस्थिति को सच्चा मानता है। कभी कभी तुम बातों में भी समझते हो कि देखो पहले मेरे पास कितना धन था, भविष्य में मेरे पास कैसे धन हो। तो भाई भूतकाल भी नहीं है, भविष्यकाल भी नहीं है, तो वर्तमान तो है ही नहीं। तुम किसके लिए शोक कर रहे हो, जो है ही नहीं उसके लिए शोक करते हो। अच्छा बताओ, जो तुम्हारे पास नहीं है, शोक करने से वो चीज तुम्हारे पास आ जाएगी क्या? क्या शोक करने में सामर्थ्य है? यदि शोक तुम्हारी गई हुई वस्तु को ले आता है तो हम कहेंगे शोक करो। शोक से क्या फायदा? शोके नहीं अस्ति सामर्थ्यम, शोक में सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारा बाप है, तुम्हारा दादा है, और जो तुम जिस समय 20-30 वर्ष के देखते थे आज वो बुढ़े हो गए, और जो अभी 20-30 वर्ष के दिखते हैं ये 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे। इसलिए मनुष्य की यदि संपत्ति चली जाए तो ऐसा नहीं विचार करना चाहिए ओहो मेरा सब कुछ चला गया, ये समझो कि ये तो था ही नहीं, इसके बिना तो मुझे होना ही था। संपत्ति के बिना तो मुझे होना ही था, हो गया, क्या हो गया? नैतन ममेति तन्मत्वा, ये मेरा है ही नहीं। जो वस्तु अनागतम यन्न ममेति विद्यात्, अतिक्रांतम यन्न ममेति विद्यात्, दृष्टम बलीय इति मन्यमानास्ते पंडिताः। देखो जो वस्तु अभी तुम्हारे पास आई नहीं है वो तुम्हारी है ही नहीं, वो तो सीधी बात है। और जो चली गई वो तुम्हारी कैसे? तुम्हारी होती तुमको छोड़ती कैसे? कितनी अच्छी बात है सज्जनों, जो हमारी होती तो वो हमको छोड़ के कैसे जाती हो? वो पहले से ही हमारी नहीं थी, तो भाई हमको मिली थी ना कि मिली थी तो वो भाग्य के कारण से मिली थी, चली गई। दिष्टम बली यह है, दिष्ट माने भाग्य है, प्रारब्ध ये बलवान है, प्रारब्ध से आई और प्रारब्ध से चली गई। देखो इस संसार के अंदर जीवन में सबकी एकता को देखो और सबकी विभिन्नता को देखो। सबकी एकता तो यह है कि अनाढ्या जिनके पास पैसा नहीं है वो भी जीवित रहते हैं, और जिनके पास खूब शासन है वो भी जीवित रहते हैं। इसमें सब एक है, खूब पैसे वाले हैं, जिनके पास राज्य है बहुत बड़ा ऐश्वर्य है वो भी जीते हैं, और अनाढ्याशा भी जीवंती और अनाढ्य व्यक्ति भी जीते हैं। और बुद्धि पौरुष संपन्ना त्वयास्तुल्य अधिका जना, कोई तुम्हारे से ज्यादा पैसे वाले हैं, कोई तुम्हारे से कम है, सब जीते हैं। और संपत्ति किसी के पास ज्यादा कम है उसे फायदा क्या हुआ? भोजन में तो कोई संपत्ति काम आती नहीं, खाने पीने में तो फल है, भोजन है, अनाज है, ये काम आता है, और शरीर इनसे चलता है, धन से तो चलता नहीं आता है। तुम ठीक ढंग से विचार करो। राजा ने कहा, महाराज मेरी तो आप आंख खोल दिए, मैं तो समझता था कि मेरा धन मुझे मिला, राज्य मुझे मिला तो बड़ा राजी हुआ, और जब वो चला गया तो ऐसा लगा कि सब कुछ मेरा छिन गया। काल का ऐसा झपट्टा आया कि नदी के वेग से जैसे वृक्ष गिर जाते हैं ऐसे मेरा धन चला गया, इसलिए मेरे मन में शोक आ गया। अब मेरी ये दशा हो गई कि मैं रोता भी हूं, जैसा तैसा मिलता है उससे निर्वाह भी करता हूं, लेकिन अंदर से मेरा शोक दूर नहीं होता। आपकी बातों से मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे और इस विषय में समझाओ, क्योंकि मेरे जैसे अनेक अज्ञानी प्राणी संसार में व्यर्थ में ही शोक कमा रहे हैं, धन नहीं कमा रहे हैं, शोक कमा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि वो आदमी जार बड़े धन कमावे, धन को नहीं कमावे, चिंता कमावे, राजन का है। तो उस मुनि ने कहा कि देखो, यथार्थ विचार किए बिना मनुष्य ऐसे ही भूत और भविष्य को लेकर चिंता करते रहते हैं। यथार्थ तत्व पर विचार करो तो उसका परिणाम होगा कि शोक चिंता नहीं होगी। अवाप्यान कामयन नर्थान, जो पदार्थ पाने योग्य है उनकी तो कामना करना दोष नहीं है। जैसे भूख लगी तो भोजन के लिए पदार्थ प्राप्त करें, इसमें दोष नहीं। प्यास लगे तो जल ले हो, सर्दी लगे तो कपड़ा पहन लो, कोई दोष नहीं। लेकिन नानवाप्यान कदाचन है, अनवाप्यान जो हम प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं उनके लिए व्यर्थ चेष्टा क्यों करो? ये मनुष्य को बांधने वाली है। जो आवश्यक वस्तु है उसकी प्राप्ति और अप्राप्ति में मनुष्य इतना हर्ष शोक नहीं करता, फिजूल वस्तुओं के लिए मनुष्य शोक करता है। जो व्यक्ति जैसा मिल जाए उसमें आनंद में रहता है, वह व्यक्ति अपने पास कभी शोक को आने ही नहीं देता। और जब आदमी के पास संपत्ति आती है, नष्ट हो जाती है, तो वो विधाता की निंदा करने में लग जाता है। अरे जो लब्धार्थश्च न मृष्यते, जो प्रारब्ध से मिली है उसमें तुम संतोष नहीं कर सकते, तो जो तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है वो तुम्हें मिलेगी कैसे? और आगे जाकर भाग्य से मिल भी जाए तो संतोष के बिना तुम्हारे उस वस्तु का संबंध ही क्या है? देखो, इस वस्तु के साथ में हमारा और सीधा संबंध नहीं है, इसके बीच में संतोष का संबंध रखोगे तब तो ये वस्तु हमको शांति देगी। और यदि इसके साथ राग का संबंध रखेंगे, द्वेष का संबंध रखेंगे, तो ये शोक पैदा करेगी। और दुनिया में तो देखो शोक तो आजकल नए नए बढ़ गए। अनार्हान अपि चैवान्यान् मन्यते श्रीमतो जनान। लोग देखते हैं कि देखो इस आदमी के पास पैसा हो गया, ये तो पैसे के योग्य ही नहीं है, हमारे पास नहीं, हम तो पैसे के योग्य है। दूसरों को अयोग्य मान करके, दूसरों को अयोग्य मान करके अपने लिए धन की इच्छा करता है और दूसरों के पास धन क्यों आ गया, एतस्माद् कारणात् दुखम अनुभूयते। और ये दुख कैसे मिटे, अब मैं सोचूंगी इनके पास ये कि एक धन के योग्य नहीं, इनके पास क्यों इतना धन है, ये मेरे दुख का कारण, इसको कौन मिटाएगा। ईर्ष्या अभिमान संपन्ना, वो व्यक्ति कभी शोक रहित नहीं हो सकते। तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है तो तुमको एक सुखी करने का उपाय बताता हूं राजन, कि महाराज यही तो सुनने के लिए आया होंगे। दूसरों की संपत्ति है ना, उसमें वो लोग खुश होते हैं, उनको देख देख कर खुश हो जाओगे, वाह बहुत अच्छा है, इसके पास खूब पैसा है, खूब अच्छा है। दूसरे के पास सहस्व श्रीम अन्य शाम, दूसरे के पास जो खूब लक्ष्मी होती है, त्वई नास्ती, तुम्हारे अंदर नहीं है, और वे लक्ष्मी का उपयोग करते हैं, उसमें अभिनंदिष्यते, आप खूब अभिनंदन करो, प्रशंसा करो। और यदि आप उसके साथ द्वेष करोगे तो द्वेष करने से आपके पास जो संपत्ति वो भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसी अवस्था में अपना भाग्य और प्रारब्ध समझ करके संतोष करना चाहिए। भोग है ये प्रारब्ध के अधीन है और अस्थिर है, स्थिर नहीं है। ये जो संसार में जो अर्थ बोलते हैं, अर्थ माने धन है, ये अर्थ अनर्थकारी होता है। इसका नाम अर्थ क्यों रख दिया, इसका नाम अर्थ रखा है भोग के लिए, भोग शब्द का अर्थ अर्थ होता है, लेकिन लोगों ने अर्थ समझ लिया, अर्थ माने बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, इससे तो अनर्थ पैदा होगा। अनर्थ अनर्थाश्चार्थ रूपेण है। लोग इन भोगों की प्राप्ति के लिए कितना ही धन लगा दिए और संपत्ति के अंदर अनंत सुख मान करके उसके अंदर उलझ गए, भ्रमित दृष्टि हो गई, अब उनको कौन समझाए। जैसे पतंगा होता है, वो दिए की रोशनी को समझ करके, बड़ा चमकीला समझ करके उसमें जा गिरता है, उसमें मौत होगी, कौन समझाए उसको। ऐसे ही लक्ष्मी के अंदर रमण करने वाला होता है, नान्य क्षयो भी मन्यते, उससे बढ़कर वो कोई कल्याण की बात समझता नहीं, पैसा आना चाहिए। हरदम अर्थ चिंतन में उनका हृदय दूषित हो जाता है, और उनको यदि पैसा मिल भी जाता है, उनका नष्ट भी होता है, तो भी उधर ध्यान ही नहीं देते लक्ष्मी की क्या दशा होगी। बहुत से लोग तो अच्छे हैं, जो लोग जो ही पैसा आता है उसको धर्म में लगाते हैं, और ज्यादा पैसा आने लगे तो उपराम हो जाते हैं, नहीं नहीं ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। परत्र सुखम इच्छन्ता है, बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा बैरागी की जरूरत रहेगी, बाबा इतने पैसे की हमारी जरूरत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि धन के लोभ में पड़ करके प्राण गंवा देते हैं, लोग पर लोग बिगाड़ देते हैं, कोई उनको शर्म नहीं आती। देखना चाहे संचये च विनाशे च, संचये च विनाशान्ते मरणान्ते च जीविते, जो आज संग्रह हुआ है उसका तो विनाश होगा, जो जन्मा है वो मरेगा, संयोग हुआ है तो वियोग होगा, ये देखने की दृष्टि है, इसको जरूर देखना चाहिए। विद्वान कौन संत ज्वरेत, विद्वान पुरुष है वो धनम वा पुरुषो राजन पुरुषम वा पुनर्धनम अवश्यम प्रजहात्येव, वो जानता है कि धन है वो आज मिला है छोड़ना पड़ेगा, चाहे धन हो चाहे कोई मनुष्य हो, धन को मनुष्य छोड़ देता है और मनुष्य धन को छोड़ देता है। पुरुष है धनम और धनम पुरुषम, एक दूसरे को छोड़ देंगे फिर भी बैरागी नहीं करते। देखो राजन, देखो इतनी बढ़िया बात आई, इतनी बढ़िया बात है, नियच्छ यच्छ संयच्छ इंद्रियाणि मनोगिरम प्रतिषेधा नचापेशु दुर्बलेश्व अहितेश्व भी। अपने इंद्रियों का संयमन करो, मन को वश में करो और वाणी का भी संयमन करो। ये मन बुद्धि इंद्रियां चाहे कितनी दुर्बल हो या अहितकारी हो, इनको वश में तो खुद को ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई इसमें आपके सहायता नहीं करेगा। कितनी बढ़िया बात है, यहां तो अपनी ही समझदारी काम आएगी। प्रतिषेधा नचाप्येषु, दूसरा कोई नहीं आएगा। हम तुमको ये नहीं कहते हैं कि हाथ में कपाली लेकर के खपरा लेकर तुम मांगने के लिए चले जाओ, हम तुमको कहते हैं कि तुम्हारे अंदर की दीनता को छोड़ो, अंदर जो तुम्हारे ना मेरे पैसा हो मेरे पे, ये दीनता छोड़ो। तुम्हारे जैसा आदमी शोक करने लगेगा जिसने जरा सी लक्ष्मी के अंदर मुंह की बात देकर मेरे पास आकर सत्संग सुनने की इच्छा की और फिर भी वो उसके अंदर शोक रहेगा, तो फिर ये सत्संग करना व्यर्थ ही हो जाएगा। जैसे कोई क्षुब्ध हुआ सरोवर है, पानी आया खूब जोर से, गदला बदला हुआ, थोड़े दिनों में वो शांत हो जाता है। इसी प्रकार से तुम्हारे मन में जो ये भावना आई कि मेरा मुंह कैसे नष्ट हो, इस समय गदला गया तुम्हारा हृदय, अब एकदम शांत हो जाएगा, तुम्हारे अंदर स्वयं अच्छे विचार पैदा हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की धनादि की इच्छा नहीं रहेगी। क्या इरादा है, ठीक है महाराज। अब देखो ऋषि ने देखा कि इसने सत्संग किया, ये कह रहा है कि मेरे मन में अब ये संपत्ति का मोह हट गया, अब वो ऋषि परीक्षा कर रहे हैं। परीक्षा करते हुए कहते हैं कि अरे राजकुमार, तू धन चाहता है क्या? धन चाहता हो तो एक बहुत बढ़िया युक्ति बताऊं। देखो तुम्हारा शत्रु कौन है? जनक जी है ना, उन जनक जी की शरण में चले जाओ। मौका पड़ने पर कभी शत्रु को भी बहुत बड़ा मित्र बनाना पड़ता है, तुम उसके पास जाओ, इतना विनयशील बनो, अपने कर्मों से तुम इतना अच्छा उसका दिल जीतो कि वो तुमको बहुत अच्छे ऊंचे ओहदे पर रख रहे हैं। और फिर जनक जी के जितने सहायक हैं मंत्री हैं उनसे तुम अपना व्यक्तिगत संबंध बनाते बनाते उनका भी काम करो और अपना भी काम करो, लेकिन उनको अपनी तरफ लेते लेते राजा को खोखला कर दो। उसका धन है, उसको धन को भी तुम किसी उपाय से खजाना खाली करा दो, उसके कपड़ों में पदार्थों में और चीजों के अंदर ऐसी सुंदर सुंदर चीजों का समावेश करो कि वो रात दिन भोग विलास में ही पड़ा रहे कि अरे ऐसा कपड़ा तो बड़ा सुंदर है भाई, भाई ये कपड़ा पहनना चाहिए, वो आया मैं देखो आज ऐसा कपड़ा पहना हूं तो इसी में उलझा रहेगा। उसको बढ़िया खाने को दो, बढ़िया घोड़ा दो, वो विलासिता में पड़ा रहे, ऐसा उपाय करें। और कभी राजा ये कहे कि अरे भाई क्या बताए, ये विलासिता में तो समय हमारा व्यर्थ जा रहा है, तो तुम हमको उपदेश दो, तो उस समय खूब उपदेश देना लेकिन व्यवहार वैसा ही करना। ये सब परीक्षा के लिए बोल रहे हैं ऋषि। धीरे धीरे उस राजा के शत्रु है, उन शत्रुओं को तुम प्रेरणा भी दे सकते हो कि देखो अब ये राजा धन से भी खाली हो गया, इसके मंत्री भी अंदर ही अंदर टूट गए, और इसमें जो है विचार करने की शक्ति भी कम रह गई, और एक काम और करो, यज्ञ दाने प्रसाद ध्यस्मे, खूब यज्ञ और दान करवाओ, इससे तो खजाना और खाली हो जाएगा। और जब यज्ञ खजाना करते खाली हो जाएगा तो ब्राह्मण लोग कहेंगे महाराज यज्ञ कराओ ना, कि भाई पैसा नहीं है, जा पैसा नहीं तो पैसा नहीं सही, ऐसे ब्राह्मण भी कुपित हो जाएंगे। ते त्वाम प्रतिकरिष्यन्ति तम भोक्षन्ति वृका इव, तुमने यहां यज्ञ करवाए तो ब्राह्मण तुमको तो आशीर्वाद देंगे और उससे नाराज हो जाएंगे, ऐसे करके तुम नीति अपनाओ। ऐसा कर लोगे तो बहुत जल्दी तुमको अपना राज्य भी मिल जाएगा, धन भी मिल जाएगा, लक्ष्मी भी मिल जाएगी। बोलो क्या राय? राजा ने कहा महाराज मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आपके पास में शुरू शुरू में आया अभी तो कितना बढ़िया ज्ञान दिया, और अब आप मुझे कपट की बात सुनाते हो। जिस राजा के पास जाऊं उसका मैं विश्वास पात्र बनूं, फिर उसके साथ विश्वासघात करूं, न निकृत्या न दम्भे न ब्रह्मन इच्छामि जीवित हूं, मैं ऐसे कपटपूर्वक जीवन से, दम्भपूर्ण जीवन से किसी राजा के यहां जाकर उसके साथ विश्वास बात करूं और अधर्म के सहयोग से बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त करूं, महाराज ऐसा तो मेरे मन में भाव आता ही नहीं है। आपकी कृपा से मर भले ही जाऊंगा, आपने कहा कि खप्पर लेकर के मत घूमना, लेकिन ऐसे आपने जो अभी उपाय बताए इसकी अपेक्षा तो कटोरा लेकर मांग करके खाना अच्छा लगता है, किसी के साथ विश्वासघात करूं अच्छा नहीं लगता। मैं संसार में धर्म पूर्वक रहना चाहता हूं, चाहे राज्य चला जाए, चाहे परिवार चला जाए, चाहे सब कुछ चला जाए, पर मेरे पास से धर्म नहीं जाना चाहिए। महाराज आपने जो बात बताई असमर्थ हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। ऋषि के आंखों में जल आ गया, बेटा मैंने ये सब बातें तुम्हारे हृदय की परीक्षा के लिए कहा कि तुम्हारे सत्संग की बात कितनी लगती है। सत्संग की बात सुनते हैं तो उस समय अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहार में लोगों में कपट दिखता है। मैंने यही तुम्हारी परीक्षा की, कहीं तुम्हारे कपट तो नहीं है। उपपन्नस्त्वम एतेन यथा क्षत्रिय भाषसे, जैसा तुम अभी बोल रहे हो मुझे इस बात से सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब तो तेरा सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तुम्हारा शत्रु तो अभी जनक है ना? अरे जनक तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, जनक मेरा शिष्य है, मैं तुमको जनक के पास ले चलता हूं और जनक से तुम्हारा परिचय करवाकर मैं जनक के पास तुमको रखना चाहूंगा। तुमको राज्य से जिसने भ्रष्ट कर दिया उस जनक के पास जाकर तुम कितने प्रेम से रह सकते हो, ये मैं तुम्हें विशेष रूप से बताना चाहता हूं। देखो जनक ने तुम्हारे पर आक्रमण किया, उस समय तुम्हारे मन में जनक के प्रति शत्रुता थी, मेरे पास आकर तुमने सत्संग किया, तुम्हारा हृदय निर्बल निर्मल हो गया, अतएव अब तुम्हारे मन में राज्य के चले जाने का दुख नहीं है, ये जानकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता है। विदेहराज जनक मेरे यहां आएंगे और उनको आज्ञा दूंगा और वे आपको सम्मान के साथ अपने पास रखेंगे। उन्होंने आदेश दिया, जनक जी को बुलाया, जनक जी आए और जनक जी से कहा कि देखो महाराज, इस राजा का राज्य आपने लिया कि हाँ महाराज, ये राजा है, इसके आंतरिक भाव को मैं जानता हूं, इसका हृदय बिल्कुल कांच की तरह से साफ है, आदर्श है वह शुद्ध आत्मा, शारदश चंद्रमा यथा, शरदकालीन चंद्रमा के समान, इसके अंदर लीश मात्र भी पाप नहीं है, जनकराज इसके साथ संधि कर लो, संधि कर लेनी चाहिए और जैसा तुम मेरे पर विश्वास करते हो ऐसा इस पर विश्वास करो। जनक ने कहा महाराज जैसी आपकी आज्ञा, परंतु ये इतने विश्वास के लायक इतने जल्दी कैसे हो गए, मैं इसका कारण समझना चाहता हूं। कहने विदेहराज तुम जानते हो कि जब व्यक्ति के मन में ये भाव पैदा होता है कि भाई ये चीज बहुत अच्छी है, ये सद्विचार पैदा होता है, उसी समय उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। मैंने इसके साथ सत्संग की बातें की, बड़े प्रेम से इसने श्रवण किया और श्रवण करने के बाद इसने इसे बड़े आत्मीयता से स्वीकार किया और स्वीकार करके इसने ये कहा कि मैं अधर्म में कभी नहीं जाऊंगा। मैंने परीक्षा भी ली इसकी, ये अधर्म में नहीं जाऊंगा। इतना जल्दी इसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो ऐसा शौर्यवान ऐसा बुद्धिमान आपको मंत्री चाहिए भी ना, ऐसा ये मंत्री है, इसको आपको मंत्री बनाओ। क्योंकि राजा के पास मंत्री की बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती है। तुमने भी सदा धर्म को अपनाया है और ये भी कभी धर्म को छोड़ने वाला नहीं है। यद्ययम् प्रतियुध्येत, आज इसके पास इतना बल मनोबल बन गया है कि अभी यदि आपसे युद्ध करे ना तो ये आपको युद्ध में परास्त कर सकता है। जिगीषमाण स्वाम युद्धे, और तुम्हारे बाप दादों का राज्य छीन सकता है, परंतु अब ये ऐसा करने वाला नहीं है, आपके साथ ऐसा करने वाला नहीं है। तुम जो है बिना युद्ध किए ही इसको अपने वश में करो, अपने स्नेह और प्रेम से इसको सींचो। और अनुचित लोभ का त्याग करके प्रेम पूर्वक इसके साथ संबंध करो। देखो आज तुम्हारी विजय हुई है, पर सदाई विजय होती रहे असंभव है, और कोई आज हार गया और सदाई हारता रहे ये भी असंभव है। नैव नित्यम जयस्तात नैव नित्यम पराजय है, तस्माद् भोजयितव्यश्च भोक्तव्यश्च परोजन है। इसलिए संपत्ति का उपभोग करो और कराओ, यही सबसे बढ़िया काम है। ये बात सुनकर के जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। यथा ब्रुयान महाप्राज्ञ, महाराज आपने तो मेरी आंख खोल दी। कोई भी व्यक्ति शत्रु होता है वो सदा के लिए नहीं होता है, मित्र सदा के लिए हो सकता है, सुहृद सदा के लिए हो सकता है, पर शत्रु सदा के लिए नहीं होता है। मैंने इसको शत्रु दृष्टि से देखा, आपने दृष्टि बदल करके मुझे मित्र दृष्टि से देखने के लिए कहा। बस महाराज, यद यद वचनम उक्तोस्मि करिष्यामि तत् तत् तथा, जो जो आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। जनक जी ने उस कौशल देश के राजा क्षेमदर्शी से कहा कि आओ, आज से तुम और हम दोनों बराबर के हैं। मैं जीतने वाला हूं, तुम हारने वाला हो, यह मैंने मन से भाव हटा दिया है। धर्म और नीति का सहारा लो। तुमने आज इतने बड़े ऋषि का सत्संग करके मेरे मन को जीत लिया है। आत्मानम अनवज्ञाये जितमवत वर्तताम भवान। तुमने अपनी अवज्ञा न करके, तुम अपने अंदर किसी प्रकार से घृणा का भाव मत रखना और मेरे साथ बराबर प्रेम का बर्ताव रखना। मैं तुम्हारी बुद्धि का बहुत आदर करता हूं। यद्यपि मैं तुमको जीत चुका हूं, लेकिन आज मैं हार गया हूं। जैसे सत्संग की बात ऋषि ने बताई है, उसके अनुसार मेरी विजय विजय नहीं है। वास्तव में विजय तो महापुरुषों के वचनों को सुनकर अपने अंतःकरण को पवित्र करना यही होता है। आओ राजकुमार, ये राजकुमार राजा यही थे, छोटे थे अवस्था में, तो आओ राजकुमार मेरे साथ तुम महल में चलो, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। वो बड़ी नम्रता से कहा, मैं अपने गुरुदेव के आदेश के अनुसार आपके राज्य का भार स्वीकार नहीं, मैं अपने बराबर आपको राजा मानता हूं। आप मेरे मंत्री नहीं रहेंगे, मंत्री रहें तो आप मेरे अधीन हो जाएंगे, मैं आपको अपने अधीन नहीं बनाता हूं, आप चलिए मेरे महल में। वहां ले गए, खूब सम्मान किया और अपनी कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया और अपना राज्य वैसा ही उसका राज्य स्वतंत्रता से वो शासन करने लग गए। पितामह भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, इस प्रकार से मनुष्य अपने सामने आई हुई विपत्ति परिस्थिति में संतों के उपदेश का सत्संग का ठीक पालन करता है तो उस समय उसको एक नई दिशाबोध मिलते हैं और देखो उसे एक नया भाग्य बनता है। कब ये जानता था कि जनक जी के साथ मेरा इतना प्रेम हो सकता है, और प्रेम क्या, इनके साथ तो रिश्ता ही हो गया, वो तो ससुर हो गए। इसलिए मनुष्य को अपने गिरती हुई परिस्थिति से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए और उसको आगे बढ़ना चाहिए। अब युधिष्ठिर ने गणतंत्र राज्य के विषय में पूछी, तब बताया कि देखो गणतंत्र के राज्य में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि राजा के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। सबके सामने सब भेद खुलने की जब बातें होती हैं, शत्रुओं को पता चल जाता है। गणतंत्र के राज्य में बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े उत्साही, बड़े बुद्धिमान मंत्री, ये सब मिलने बड़े मुश्किल होते हैं। गणतंत्र में भी मुख्य मुख्य व्यक्ति एकांत में बैठकर विचार करें, सब लोगों के बीच में विचार करने से जिनको ये बात आगे नहीं कहनी चाहिए उनके पास बात चली जाती है, उससे गणतंत्र में नुकसान होता है। वैसे संघीय राज्य प्रणाली में कोई दोष नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, अनेक राजा मिल करके अपने अपने देश का एक कमेटी बना करके शासन करें, राज्य का राज्य से युद्ध नहीं होता, सुख शांति से प्रजा रहती है। परंतु वहां के भी कई दोष होते, उन दोषों पर विचार करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज मैं तो आपसे गणतंत्र राज्य के विषय में, धर्म के विषय में पूछना चाहता था कि असल में हम लोग राजाओं का प्रजा को किस धर्म के लिए लगाना चाहिए। महानयम धर्मपथ है, धर्मपथ तो बड़ा लंबा चौड़ा है महाराज, शाखाएं बड़ी लंबी चौड़ी है, हम कैसे समझें इसको। और इस लोक में परलोक में मैं कैसे धर्म का पालन करूं। ध्यान से सुनना भाई, बहुत ही अच्छा प्रसंग है, हमको अच्छा लगा इसलिए बोलते हैं। पितामह भीष्म बोलते हैं कि देखो युधिष्ठिर, अब हम आपको व्यक्तिगत विषय में बताते हैं। परिवार के अंदर एक माँ है, एक पिता है और एक शिक्षा देने वाले गुरुजन है, तीन है। माता का स्थान बहुत ऊंचा होता है और गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। जब माता की, पिता की और गुरुजनों की किसी प्रकार की कोई आज्ञा हो, उस आज्ञा के ऊपर कोई विचार करने का अधिकार पुत्र को नहीं होता, अतः बिना विचारे उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इससे बढ़कर मुझे कोई धर्म मालूम नहीं देता है। माता पिता की आज्ञा का पालन स्वयं अपने आप में परिपूर्ण धर्म है। स्त्रियों के लिए जो कन्याएं विवाहित हो जाती हैं, उनके माता पिता अब सास ससुरी होते हैं, इसलिए पुरुषों के लिए अपने पिता माता हैं, स्त्रियों के लिए ऐसे ही सास ससुर माता पिता हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये माता पिता क्या है, तीन लोक है। जो आदमी त्रिलोकी की सेवा करना चाहता है, जो आदमी तीनों वेदों के पढ़ने का फल लेना चाहता है, जो व्यक्ति तीन प्रकार की अग्नियों में आहुति दे करके अग्निलोक की कामना करता है, तीन प्रकार की अग्नि होती है, अग्निहोत्र में अग्नि करते हैं, अग्नि देते हैं उस समय में, एक तो है गार्हपत्य, एक दाक्षिणायन दाक्षिणाग्नि और एक आहवनीय, तीन अग्नियां होती हैं। ऐसे ही गुरु, माता और पिता ये तीनों अग्नियों के समान हैं। देखो यदि तुम पिता की सेवा करोगे तो इस लोक के सारे प्राणी की सेवा कर लोगे, और माता की सेवा करोगे तो परलोक की सेवा कर लोगे, और गुरुजनों की सेवा करोगे तो ब्रह्मलोक की सेवा करोगे। तीन लोक हैं, ये लोक, परलोक और ब्रह्मलोक, तीन ही वेद हैं। माता पिता की, गुरुजनों की सेवा करोगे, तीनों वेदों को पढ़ने का फल मिलेगा। युधिष्ठिर ऐसे 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 निरक्षर लोग हुए जिनको अक्षरों का ज्ञान नहीं, लेकिन माता पिता की सेवा से उनके अंदर ऐसे ऐसे भाव पैदा होते थे जो वेदों में लिखे हुए हैं, ऋचाओं में लिखे हुए हैं। माता पिता और गुरुजन को केवल मनुष्य नहीं समझना चाहिए। जैसे युधिष्ठिर राजा होता है, उस राजा को कोई मनुष्य नहीं समझता है, उसके अंदर एक राजपना, राजत्व दिखाई देता है, ये राजा है। ऐसे ही माँ को केवल शरीर दृष्टि से नहीं, पिता को शरीर दृष्टि से नहीं, और गुरु को भी शरीर दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सर्वे तस्या द्रितालोका, जिसने इन तीनों का आदर कर लिया उसका त्रिलोकी में आदर हो गया। और अनाद्रिता, यदि माँ के सामने बोल गए, पिता के सामने बोल गए, उनका अनादर किया, अब उसके बाद कुछ भी यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, जप करो, तुम्हारी क्रिया का कोई फल नहीं होगा। जैसे भूंजा हुआ बीज होता है, उसको आप खेती में डाल दो, उससे खेती नहीं होती। उसके लिए ये लोग परलोक सब बिगड़ जाएगा, परलोक की शांति वगैरह नहीं मिलेगी। देखो दशैव तु सदाचार्य श्रोत्रियान अतिरिच्यते, आचार्य होता है वो गुरु होता है आचार्य, आचार्य दस श्रोत्रियों से बढ़कर है। श्रोत्री कहते हैं वेद का ज्ञान करने वाला, उसे दस गुना ज्यादा अपना आचार्य होता है। और पिता होता है वो दस उपाध्याय से बढ़कर होता है, और मां का महत्व है वो 10 पिताओं से बढ़कर होता है। मां का स्थान पिता से 10 गुना ज्यादा है, और पिता और जो पिता से और मां से 10 गुना ज्यादा गुरुजनों का स्थान होता है। गुरु गरियान पितृता है और मातृतश्चेति मे मति, कारण कि माता और पिता से शरीर मिलता है, और आचार्य शिष्टा या जाति सा दिव्या सा जरा मरा, लेकिन जो गुरुजनों से ज्ञान मिलता है दिव्य ज्ञान, वो अजर अमर ज्ञान मिलता है, इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। माता पिता यदि डांट फटकार लगाते हैं तब भी उनके प्रति अपने मन में जरा से भी क्रोध की भावना नहीं आनी चाहिए। क्रोध की भावना आते ही उसकी सारी तपस्या सारा धर्म क्षीण हो जाता है। विद्याम गुरु विद्याम श्रुताये गुरुनाद्रियन्ते, जो आदमी गुरुजनों से विद्या ले ली और फिर गुरुजनों का आदर नहीं करते हैं, न उनके पास जाते हैं, अथवा वे पास में आ जाए तो भी उनका आदर नहीं करते हैं, एक साधारण उनको समझते हैं, वे भ्रूण हत्या से बढ़कर पाप करते हैं। ये न प्रणाति पितरम ये न तेन प्रीत प्रजापति, जिसने अपने पिता को प्रसन्न कर लिया उसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। और प्रणाति मातरम ये न, और जिसने अपने माता को प्रसन्न कर लिया पृथ्वी तेन पूजिता, उसने सारी पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों का पूजन कर लिया, और ऐसे इसका विपरीत फल है भाई। जो अपनी माँ को नहीं मानता, माँ की आज्ञा नहीं मानता, माँ से द्वेष करता है, वो सारे प्राणियों की हत्या करने का पाप लगता है। पृथ्वी पर जितने प्राणी सबको हत्या करे पाप लगे, वो पाप लगता है माँ का अपमान करने पर। गुरु यदि कठोर शब्द बोलते हैं तो उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। माता पिता कठोर शब्द बोलते हैं तो उनकी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। एतत् सर्वम् अनिर्देशेनैव मुक्तम्, ये जो मैंने बातें कही है युधिष्ठिर, बहुत सोच समझ करके गहराई के साथ की है, हर व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए। एतत् श्रेयः, ये कल्याण की बात बताई है, न अन्यस्मात् विशिष्टम्, इससे बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं, कोई धर्म नहीं, और इससे बढ़कर कोई आपको ज्ञान की बात मिलेगी भी नहीं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि प्रभु, धर्म में जो स्थित रहने वाला व्यक्ति है उस मनुष्य का बर्ताव कैसे हुआ करता है, उसका वर्णन कीजिए। सत्य और असत्य सारे जगत में रहने वाले हैं, तो इसमें सत्य के ऊपर स्थित रहना चाहिए, सभी कहते हैं, पर सत्य की क्या परिभाषा है महाराज? कोई तो सत्य किसको बोलते हैं, कोई सत्य किसी को बोलते हैं। आपकी दृष्टि में सत्य क्या है, झूठ क्या है, सनातन धर्म क्या है? पितामह भीष्म ने कहा, देखो सत्य की परिभाषा बड़ी गहराई से समझनी चाहिए। सत्य वो है जो देखने से, सुनने से, समझने से, जिसमें कहीं कोई फर्क न पड़े, उसका नाम सत्य है। जैसे परमात्मा के विषय में कहा जाता है तो आप अनुभव करो, आप उसके विषय में शास्त्र देखो, ये कहीं फर्क नहीं पड़ता, वो परमात्मा है, ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए सत्य से प्राप्ति से बढ़कर कोई प्राप्ति नहीं है, सब सत्य से बढ़कर कोई नहीं है। और असत्य वो होता है जो आगे पीछे गलत साबित हो जाता है, व्यवहार में भी जो गलत हो जाता है। तो वाणी से भी सत्य हो, आचरण से भी सत्य हो, और विचार में भी सत्य हो, वो सत्य होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि झूठ बोलने से यदि प्राणियों की रक्षा होती हो तो वो झूठ भी सत्य होता है। कभी कभी हिंसा करने पर भी वो व्यक्ति वो आचरण अहिंसक और बड़ा श्रेष्ठ होता है, बड़ा पुण्य का आचरण। हिंसा करने से भी पुण्य होता है कि महाराज ऐसी क्या बात है कि सुमहत प्राप्नुयात पुण्यम गंगायाम इव कौशिके है। देखो अनुमान लगाओ कि गंगा के किनारे एक सर्पणी ने 1000 अंडे दे दिए और वहां जाकर के कोई उन 1000 अंडों को फोड़ देता है तो ये हिंसा तो हुई, पर ये हिंसा पुण्यवती हिंसा है, अच्छी हिंसा है। क्यों? क्योंकि इससे कितने सर्प बनते बताओ, इतने सर्प से वो बच गए। इसके लिए कोई कह नहीं सकते कि एक ही आचरण धर्म होता है क्या। प्राणियों के अभ्युदय के लिए और कल्याण के लिए जो कुछ कहा जाए वो धर्म होता है। धर्म नाम इसलिए पड़ा कि धारणा धर्म मित्याहु, जिसको धारण करते हैं उसका नाम धर्म है। और धर्म के द्वारा प्रजा का धारण होता है, प्रजा की रक्षा होती है, इसलिए इसका नाम धर्म है। देखो कभी कभी कोई लुटेरा किसी धनी आदमी के पीछे पड़ गया हो और उसको मार करके भी या छीन करके जैसे भी उसे डरा धमका के धन लेने की इच्छा हो गई हो और हम लोगों से वो लुटेरा पूछता है कि इधर से वो आदमी गया क्या, तो क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहिए कि नहीं गया। कहते हैं वो झूठ हो जाएगा, ऐसा झूठ अनर्थ करने वाला नहीं होता है। श्रेयस तत्र अनृतम, अनृत माने वो झूठ भी कल्याण करने वाला होता है। यदि कुछ नहीं बोलोगे तो उसको बैम होगा कि कुछ नहीं बोले तो इधर गए हैं, कि नहीं भैया इधर नहीं गया तो उधर गया। इसलिए ऐसा झूठ झूठ नहीं कहलाता है। ऐसे ही किसी का जीवन का नाश होता हो और हमारे बोलने से यदि उसका जीवन बचता हो तो झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है, पर जिसका जीवन बचता हो वो श्रेष्ठ पुरुष होना चाहिए, सज्जन पुरुष होना चाहिए। एक विवाह के समय में झूठ बोला है झूठ नहीं होता है। प्राणात्यय, प्राण संकट में पड़ने पर भी झूठ झूठ नहीं होता है। अर्थस्य रक्षणाय, और पैसे की रक्षा की धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलना जाता है वो भी झूठ नहीं होता है, और धन की रक्षा के लिए भी झूठ बोले तो झूठ नहीं होता है। ऐसे बहुत सी लंबी चौड़ी विस्तार से बात बताई, सार सार ये बताई। कभी कोई आदमी आकर के हमसे कहे कि हम सौगंध खा के कहते हैं कि हम ये पैसा पुण्य के काम में लगाएंगे, आप हमको पैसा दे दो, ऐसे मौके पर मनुष्य को पैसा दे देना चाहिए, और यदि वो पुण्य के काम में नहीं लगता है तो उसका पाप उसी को ही लगता है, भयंकर पाप लगता है। लेकिन नहीं दोगे वो शपथ खा रहा है, नहीं दोगे तो आपको पाप लगेगा। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि महाराज जब मनुष्य भयंकर संकट में पड़े तो क्या करना चाहिए? पितामह भीष्म ने कहा कि उसका बर्ताव अच्छा होना चाहिए, दंभियों के साथ में नहीं रहना चाहिए। जो लोग दूसरे की निंदा करते हैं उनके साथ में नहीं रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है संकट से पार हो जाता है, जो कभी पाप नहीं करते, जो प्राणियों को क्षमा करते हैं, जो अपने परिवार में ही संतुष्ट रहते हैं, जो अपने प्रारब्ध से मिला हुआ है उसमें किसी प्रकार से अप्रसन्न नहीं होते हैं, आराम से भी छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। जिनका मन हरदम शांत रहता है, जिनके रजोगुण तमोगुण शांत हो गए हैं, जो देखो जो शहद का काम नहीं करते, जो मांस का काम नहीं करते और जो मदिरा का काम नहीं करते हैं, वे लोग सदा सुखी रहते हैं। और सबसे बढ़िया क्या है, सबसे बढ़िया काम यह है भाई, ईश्वरम सर्वभूतानाम जगत प्रभवाप्ययम, ईश्वर है वो सारे संसार का मालिक है, उस भगवान नारायण का भजन करो। जो नारायण देव की शरण लेते हैं वो संकट से तर जाते हैं। ये साक्षात नारायण देव स्वयं भगवान कृष्ण हैं। देखो इनकी आंखें कितनी सुंदर हैं, कमल के समान, आंखों के पलकों के पास कितनी अच्छी सुंदर ललाई है, और पीतवासा कैसा सुंदर इनका पीतांबर फड़कता है। ये तुम्हारे लिए एक ममेरा भाई बने हुए हैं, वास्तव में तुम्हारे बड़े सुहृद हैं, तुम्हारे आत्मीय हैं, सारे जगत के आत्मीय हैं, तुम्हारे हित में लगे हुए हैं। इन भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सहारा लेते रहो, दुर्गाणी अति तरंती, सब कष्टों से तुम पार हो जाओगे। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि बहुत से लोग कठोर स्वभाव वाले होते हैं, अंदर से बड़े नरम होते हैं और बाहर से बड़े कठोर होते हैं, कई कई बाहर से बड़े कठोर होते हैं, अंदर से बड़े नरम होते हैं, हम उनको कैसे पहचाने। पितामह भीष्म ने कहा कि देखो ये सब बातें व्यवहार से मालूम देती हैं, वाणी से कठोर बोलेगा लेकिन व्यवहार में नम्र है तो अंदर से नम्र है, और वो जो बाहर से नम्र बोलता है लेकिन व्यवहार में बड़ी कठोरता है तो वो अंदर से बड़ा कठोर है। इस विषय में हम तुमको बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। एक राजा था, वो राजा बड़ा दुराचारी था और दुराचार के कारण से वो जो है लोक प्रसिद्ध हो गया कि बड़ा दुराचारी, खूब हिंसा भी करता था, पर हिंसा रति क्रूर है, ऐसा राजा था। फिर वो मर गया, मरने के बाद वो गीदड़ बन गया, सियाड़ियों बन गया, वो सियाड़ियों सियाड़िया बनने के बाद उसने विचार किया कि ओहो मानव शरीर मुझे किस काम के लिए मिला था और मैं क्या करने लग गया। तब उसके मन में बड़ी विचित्रता आई और उसने निर्वेदम परमंगत है, बड़ा भारी वैराग्य हुआ उसको, देखो मानव शरीर किस बात के लिए मिला और मुझे आज ये गीदड़ शरीर मिला। कि महाराज उसको ऐसा विचार कैसे हो गया, मानव शरीर में तो विचार हुआ नहीं, गीदड़ शरीर में कैसे विचार हो गया, क्योंकि गीदड़ शरीर तो परमात्मा के विषय में बात करने के लिए, कल्याण करने के लिए होता ही नहीं, शरीर तो मानव शरीर से ही कल्याण की बात हो सकती है, पितामह गीदड़ शरीर में ऐसा विचार क्यों आया। बहुत अच्छा प्रश्न किया युधिष्ठिर। उसने कभी किसी अपने संगी के साथ, मित्र के साथ मिलकर एक बार किसी महात्मा का संग किया और उस महात्मा के सत्संग में बैठकर उसने ये सुना कि मानव जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, और उसके सुनते समय ये बात जच गई कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं। एक बार अपने कर्म से घृणा हो गई, लेकिन उसके बाद फिर वो अपने संगियों के साथ में मिलकर के, अपने मित्रों के साथ मिलकर के वैसे ही करने लग गया और फिर मर गया। अब वो सत्संग का विचार यहां पैदा हुआ। युधिष्ठिर तुम्हारा राज्य, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बंधु ये यहां तक ही है, लेकिन देखो सत्संग का विचार मरने के बाद भी काम आता है। वो वहां उसको वैराग्य हो गया। वो मशाणों में रहता था, अकेला रहता था, मांस नहीं खाता था, पत्ते खाकर रह जाता, सूखे पत्ते खाकर। परणाहार है कदाचित च नियम व्रतवान अपी, वो नियमक व्रतवान अपी कदाचित उदके नापी, कभी कभी जल मिल जाता जल पी करके रह जाता। एक बार सारे गिदड़ इकट्ठे होकर उसके पास आए, कहने लगे तुम हमारी जाति में हो, हमारे जाति के लोग मांस खाते हैं, हमारे जाति के लोग ये गंदी गंदे पड़े रहते हैं, सड़े गले जानवर उनको खाते हैं, उससे निर्वाह होता है, तुम ही एक ऐसे अकेले सोच क्यों रखते हो, पवित्रता क्यों रखते हो, तुम भी हमारे साथ आओ। उसने कहा कि देखो बंधुओं, आप लोगों की आप लोग जानो, मेरे मन में तो वैराग्य हो गया, रुचि नहीं होती, बुरे आचरणों के कारण से मैं अब घबरा गया, बहुत बुरा कर लिया। अरे अपनी जाति में तो ऐसा विश्वास ही नहीं होता, तुम्हारे अंदर ये बुरा भले का ज्ञान कैसे है, अब ये मैं भी क्या बताऊं आप लोगों को। अपने कुल की मर्यादा अच्छे काम से बनेगी, बुरा काम से नहीं बनेगी, इसलिए मैं तो यहीं पड़ा हूं और यहीं मुझे रहने दीजिए। अब जहां जो है चारों तरफ जंगल के अंदर ये बात फैल गई, गिदड़ बड़ा पवित्र आत्मा है। तो एक दिन सिंह ने ये बात सुनी, तो सिंह उस गिदड़ के पास आया और गिदड़ से कहने लगा कि गिदड़ आओ महाराज बैठो, क्या बात है, मैं इस वन का राजा हूं और मुझे ऐसा पता चला है कि तुम किसी प्रकार मांस वगैरह नहीं खाते हो, तो ऐसा क्या कारण है कि महाराज मेरी रुचि नहीं है। अच्छी बात है, तो मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूं। एक बात है, मेरा स्वभाव बड़ा खराब है, मैं तो किसी को क्रोध में आकर कुछ भी कह दूं, कुछ भी कर दूं, लेकिन तुम बहुत नरम स्वभाव के हो, तो कोमलता का व्यवहार करते रहना। मेरे पास कोमल व्यवहार करने वाले मंत्री नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं तुम्हारी महिमा सुनकर के। ठीक है महाराज, आपने ये काम तो अच्छा ही कहा है कि कोमल बर्ताव करना, और कोई भी राजा मंत्री के बिना शासन भी नहीं कर सकता है, पर एक बात है महाराज, आपके पास जो अभी मंत्री हैं, उन मंत्रियों के मन में मेरे प्रति एक ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाएगा, इसलिए आप उन मंत्रियों के साथ में मुझे मत बैठाना, क्योंकि उनका और मेरा स्वभाव मेल नहीं खाएगा। आपके पास रहने वाले मंत्री हैं, वो किस स्वभाव के मुझे पता नहीं है, लेकिन आपके बातों से ऐसा पता चलता है कि आप अपने मंत्रियों से संतुष्ट नहीं है, तभी तो आप मुझे मंत्री बनाना चाहते हैं। महाराज आपका काम है बड़ा कठोर, इसलिए मैं आपके सामने एक शर्त रखता हूं, यदि वो शर्त मंजूर है तब तो मैं आपके पास रहूंगा, और शर्त यदि मंजूर नहीं है तो मैं आपके पास नहीं रह पाऊंगा। महाराज जो मेरी जाति के आत्मीय लोग हैं, मेरी जाति के, उनका आपको सम्मान करना पड़ेगा। क्या ठीक है? मेरी जो हितकारक बात है वो बात आपको सुननी पड़ेगी कि ठीक है, मेरी बात आप मुझसे एकांत में सुनेंगे, और आपको कभी कोई मेरे से सलाह लेनी हो तो एकांत में मेरे पास केवल आप अकेले आएंगे, औरों के साथ आप नहीं आएंगे, कि ये भी बात मानी, क्या अच्छी बात। अब वहां वन के अंदर राजा का इतना अच्छा शासन होने लगा युधिष्ठिर कि सब जगह उसकी प्रशंसा होने लगी। वन के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई। उसके और जितने राजा के मंत्री थे, माने सिंह के मंत्री थे, उनके मन में बड़ा द्वेष फैलने लग गया। उन्होंने देखा कि अशक्ता किंचित आधा, तुम इसने ऐसी व्यवस्था बना दी, अभी जंगल की बहुत सी चीजों का हम संग्रह करते थे वो तो सब हमारे हाथ से खत्म हो गया। अब कोई न कोई ऐसा उपाय करो कि सिंह के और इस गीदड़ के आपस में खटपट हो जाए, क्या करें क्या करें। तो देखा कि किसी की खटपट करानी हो तो उसकी कमजोरी क्या है। तो ऐसा विचार करके देखा कि सिंह की एक कमजोरी है, क्या वो भूखा होता है ना, उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, सहन नहीं होती। सिंह ने ये कह रखा है कि भाई रोज मेरे लिए यहां लाकर मांस रख दिया करो। तो लाकर के मांस तो रख दिया, सिंह सो गया, तो सिंह के और जो मंत्री थे उन्होंने धीरे से वो मांस उठा करके और उस श्रीगाल के वहां पर ले जाकर के रख दिया। श्रीगाल के यहां उसी गिदड़ के यहां ले जाकर रख दिया। गिदड़ को पता है ये यहां रखा है, बोला नहीं, चुपचाप रहा, देखे क्या होता है। अब थोड़ी देर में सिंह जगा और क्षितस्य मृगेंद्रस्य, इतना उसको जो है भूख लगी, उठा तब वो मांस उसे दिखाई नहीं दिया। तन्मासम नोपदृश्यते, अब वो जोर जोर से चिल्लाना, मेरे मांस कौन ले गया, किसने ऐसा किया। अब उनको मौका मिल गया, महाराज सचिवेन अपनी तम थे, आपने जिसको नया नया मंत्री बनाया है, आप कहते हो वो मांस खाता नहीं है, बड़ा पवित्र आत्मा है, देख लिया ना, आज अब आपको पता चला उसी ने सब काम करवाया है। अच्छा यदि उसने करवाया है तो मैं आज आपको आदेश देता हूं, आप उस गिद्र को जाकर प्राण दंड दे, उसको मार दो। क्या महाराज बहुत अच्छा आदेश दिया है, पर हम आपको केवल बहकाने के लिए नहीं बोलते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि उसके घर पर उसके स्थान के ऊपर वो मांस का टुकड़ा है। इदम तस्य ईदृशम कर्म, ऐसा कर्म है उसका कि हाँ महाराज। महाराज वो ऊपर से मीठा मीठा बोलता है, वांग मात्रेण धर्मिष्ठ है, स्वभावेन तो दारुण है, ऊपर ऊपर से मीठा है वो। तब कहा कि अच्छी बात है, वो सिंह वहां जाकर वो सोच रहा है कि गोमायूर वद्यताम, उसको मार ही दो जाओ, मेरा आदेश है। इतने में ही उसकी मां ही सिंहनी, ठहरो ठहरो की आवाज लगाई। सिंह को अलग बुलाया कि बेटा तुम राजा हो, लोगों के ऐसे ऐसे कपट भरी बातों में तुम फंस जाओगे, कैसे राज्य करोगे। जो प्राणी मांस नहीं खाता है वो तुम्हारा मांस चुराएगा, तुमने कैसे विश्वास कर लिया। कर्म संघर्ष जयी दोषरी, एक साथ ये लोग एक ही कर्म करते हैं तो ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। बेटा ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों की बातों में मत आओ। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि एकांत में रहते हैं, पर उनको भी कोई भड़का दे उनका भी चित्त डगमग हो जाता है। कोई भड़का दे तो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, ऐसे मत चलो। लुब्धानाम सुचयो द्वेष्या, जो आदमी लोभी होता है उस आदमी के लिए पवित्र आदमी सदा खटकता रहता है। जो आदमी कातर होते हैं कायर होते हैं वो बलवानों से हरदम डाह रखते हैं। मूर्ख है उनको पंडित अच्छे नहीं लगते, दरिद्री आदमी को बहुत बड़ा पैसे वाला बुरा लगता है। इसलिए ऐसा मत करो। तलवत दृश्यते वोम्बियो में, कड़ाई के अंदर कितना अच्छा उदाहरण दिया, कड़ा यूं उल्टा रखा हुआ है, उसके अंदर आकाश माने खाली जगह भी कड़ा के आकार जैसी यूं है, वहां का आकाश यूं दिखता है, पर आकाश ऐसे थोड़ा ही होता है। खद्यो तो हव्यवाडिव, जुगनू है वो आग की तरह दिखता है, पर जुगनू के हाथ लगा के देखो जरा सी भी गर्मी है क्या? ऐसा नहीं होता है। जो आदमी जैसा दिखता है, जैसा बताया जाता है, उसके पास ऐसे नहीं होते हैं। देखो राजा को बड़ी मुश्किल से कोई मंत्री, अच्छा मंत्री मिलता है, और यदि उस अच्छे मंत्री का त्याग कर देता है तो उसको अच्छे मंत्री नहीं मिलते। दुखेन असाध्यते पात्रम धारिता में सत्य सुरित, वो तुम्हारा मित्र है, उसको मारना नहीं चाहिए। दूषितम पर दोषे गृहते यु अन्यथा सुचिम, जो दूसरों के कलंक लगाने पर उस निर्दोष व्यक्ति को मारता है वो स्वयं भी जल्दी नष्ट हो जाता है, तेरी भी जल्दी मृत्यु आ जाएगी बेटा, ऐसा मत करो। जाकर के पता चलाया, श्रीगाल को बुलाया, सियाल वहां आया। अब सियाल ने वहां पर सब बात कहनी चालू की, ये आपके मंत्री पूछो आप इनसे, ये मांस का टुकड़ा इनमें से कौन लाया, कब रखा, कैसे रखा, मुझे मालूम नहीं, मैंने आकर कभी आपसे शिकायत नहीं की, आपने पुलिस पहले तो मुझे मान दिया और फिर आपने मृत्युदंड का विचार किया, ये आपके लिए शोभा नहीं देता है। दुखेन श्लिष्यते भिन्नम, प्रेम का बंधन होता है वो बड़ी कठिनाई से टूटता है, लेकिन टूटता है उसके बाद वो कभी भी जुड़ता नहीं है। भिन्ना श्लिष्टा तो या पीतिर नासा स्नेह न वर्तते, जुड़ भी जाएगा तो स्नेह नहीं रहेगा। इसलिए महाराज मैं अब आपका मंत्री भी रहूंगा तो मेरी शंकाएं आपके पास और आपकी शंकाएं मेरे पास खूब होती रहेंगी, आप मुझे शंकित दृष्टि से देखेंगे और मैं भी आपसे शंकित दृष्टि से देखूंगा, इसलिए महाराज मैं मेरी जगह अच्छा हूं, आप अपनी जगह अच्छे हो, लेकिन अब मैं ये सूखा पत्ता भी नहीं खाऊंगा, शरीर का त्याग कर दूंगा। फिर वो मृत्यु पर्यंत कुछ नहीं खाया और ऐसे ही रहा। युधिष्ठिर जहां इस प्रकार का व्यवहार होता हो वहां दूर रहना चाहिए। ऐसे ही एक ऊंट था, वो ऊंट बड़ा आलसी था, लंबी उसने जो है उसके लंबी गर्दन, अर्थात उसने एक बार ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि महाराज मेरी 400 कोस तक लंबी गर्दन हो जाएगी, तथास्तु हो जाए। फिर आलसी हो गया, एक जगह पड़ा पड़ा ही अपनी गर्दन को घुमा लेता और खा लेता, अब 400 कोस तो बहुत होता है। तब एक बार बहुत जोर से बरसात आई, अपना मुंह एक गुफा में ले गया, वो गुफा में ले गया, वहीं पर एक जो है श्रीगाल आ गया, जम्बू वो गीदड़ आया अपने स्त्री के साथ, उसने देखा कि गर्दन खूब लंबी चौड़ी, वो खाने लगे। अब 400 कोस है, वो पहले से ही 100 कोस से पहले से ही खाने लग गए। ऐसे करते करते अब उस सारी गर्दन खा गया, वो मर गया। इसलिए भाई चाहे कोई आदमी कितना ही सामर्थ्यवान हो, उसको आलस्य नहीं करना चाहिए, बल्कि नम्रता रखनी चाहिए। एक बार समुद्र ने नदियों से पूछा, पिता मैं कह रहे हैं, अरे नदियों जब बहुत जोर से बाढ़ आती है तब बड़े बड़े वृक्ष तुम गिरा देते हो, ये बांस का वृक्ष नहीं गिरता है, क्या बात है? अवज्ञा वा नानीत किंच वाते न वकृतम, या तो आप लोगों का उस बांस ने कोई उपकार किया होगा और या फिर आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देते हो, इतना बड़ा नीम का पेड़ उखड़ जाएगा, पीपल का पेड़, बड़गद का पेड़, लेकिन बांस का पेड़ तो पतला ही होता है, उसमें कोई ज्यादा पत्ते भी नहीं होते, फल भी बहुत हल्का होता है, उसको आप क्यों नहीं डिगाते? तो गंगा जी बोली कि महाराज सब वृक्ष अपनी अकड़ाई में रहते हैं, जो हमारा वेग आता है वे अकड़ाई में रहते हैं, तो हमारे वेग से सब वृक्ष कट के डूब जाते हैं। ये बांस है यूं नरम रहता है, जोर से आंधी चलती है, जिस दिशा से आंधी चलती है वो झुक जाता है, ये झुक जाता है। नम्रता है महाराज, नम्रता होने के कारण से हम इसका वध नहीं कर सकते हैं। इसलिए युधिष्ठिर अपना अपने जीवन में नम्रता लाना, और नम्रता लाने से ही तुम्हारा जीवन ठीक चलेगा। अब युधिष्ठिर जी महाराज आगे नई नई बात पूछते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण